ایسی دنیا کا بھی سکھا مالک بنے. خوشی کی بات ہے کیا؟
वास्तविक तो ये रहेगी ना, सभी जगह हाहाकार रहेगा तो वो एक आत्मा के लिए कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है. तो फर्क नहीं हो रहा तो उससे सबसे जास्ती विजय पा ली.
वो तो ठीक है. जहाँ जहाँ ज्यादा हाहाकार होगा, जहाँ जहाँ ज्यादा अकाल पड़ेगा, जहाँ जहाँ ज्यादा क्या नाम बहुत नुकसान हो रहा है, आत्मा ज्यादा दुखी हो रही है, वहाँ वो आत्मा जब पहुंचेगी तो वहाँ शांति हो जाएगी. उतना तक ठीक है, लेकिन विश्व की भाषा ही मिलेगी उनको क्या खुशी है
बाबा. इसमें दो बातें आ जाती है. अधिक वाणी में कहा है कि सभी धर्म दूसरे दूसरे धर्म वाले जो प्रधान में आते हैं, लेकिन तुम बच्चे जब ये दुनिया सात्विक रहता है, सतो प्रधान रहता है, उस समय तुम आके राजा बनते हो तो ज्यादा सुख भोगते हो.
लेकिन वो तो कृष्ण वाली आत्मा हो गई बात.
दूसरी दिशा में देखेंगे
तो राम वाली आत्मा को क्या लड्डू मिला.
वही तो बाबा. इसी दूसरी दिशा में देखेंगे तो जब दुनिया सतो प्रधान है, उस समय राजा बनना कोई क्या बड़ी बात है, आराम से रह सकते हो, कोई मेहनत नहीं करते. जब दुनिया सारी दुनिया संपूर्ण रीति से तमो प्रधान बना है, उस समय सारी दुनिया का मालिक बन के दिखाओ, तब कहा जाएगी कि तुम असली हीरो. तो वो है राम की आत्मा बन के दिखाएगा. जब सारी दुनिया तमो प्रधान बना है, उस समय साकार में हीरो बन के दिखाना है.
तभी नहीं बन रही थी.
हीरो बन के दिखाना वो एक महिमा लेने वाली बात हो गई.
सबसे पहले हीरो का डेफिनेशन क्या जो आप
समझते हैं? महिमा लेना मतलब हीरो मतलब सारी आत्माओं को सुख और शांति देना, कोई भी कंडीशन हो.
वो ठीक है, वो अच्छी बात है.
तो इस बात में सचित में राजा बनना कोई बड़ी अच्छा नहीं है.
दूसरों का कल्याण करना, उसमें आत्मा को सुख हो, वो असली सुख है.
तो इस दिशा से देखा जाए तो
विश्व के मालिक बने का लकवा लेना और विश्व का मालिक बन करके बैठना और खुश होना. हम 500-700 करोड़ की दुनिया के विश्व के मालिक हैं.
नहीं, मालिक तभी कहा जाएगा जब सभी आत्माओं को सुख और शांति का महसूस कराए.
सारी आत्मा सुख और शांत सुखी और शांत बन नहीं सकती ना
बाबा. हर एक आत्मा का अपने अपने लेवल में सुख और शांति रहता है. उस लेवल तक पहुंचाना है सभी आत्माओं को.
मुक्ति तो सबको देता है.
सुखी और शांत वही आत्माएं बनेंगी जो प्रवेश कर रही
है. शरीर नहीं अपना,
जिनका अपना शरीर नहीं है, प्रवेश कर रही है और राम वाली आत्मा या राम जैसी कैटेगरी की आत्माओं में प्रवेश करके उनकी दृढ़ता के आधार पर चेंज हो जाती है.
किस
रेड एंड रेगुलेशन की सूर्य रेड एंड रेगुलेशन की जो सच्चाई है उसको मान लेती है.
किनकी दृढ़ता बाबा? प्रवेश करने वाली आत्मा.
प्रवेश करने वाली आत्मा है. अभी तो अपोजिशन में भी तो है.
तो उनकी दृढ़ता बोले तो
जो बीज रूप आत्माएं हैं उनकी उनकी दृढ़ता के आधार पर वो आत्माएं चेंज होती है. उनमें प्रवेश करके असलियत को जान लेती है कि ये असलियत है.
तो दृढ़ता किसकी? जो प्रवेश करने वाली है, जिसमें प्रवेश करते हैं.
जिसमें प्रवेश करते हैं
उनकी दृढ़ता के आधार पर ये चेंज होते हैं.
हाँ जी.
हाँ जी.
शरीरधारी है उनकी दृढ़ता के आधार पर
ये चेंज होती है.
प्रवेश करने वाली आत्माएं चेंज होती है.
तो ये उनका कल्याण करते हैं.
हाँ जी.
प्रवेश करने वाले जैसे बाप बच्चे का कल्याण करते हैं.
सबसे जास्ती शंकर लगता है.
तो बाप बच्चे का कल्याण करते हैं और आप चाहते बाप कल्याण नहीं करें तो प्रिंसिपल ही काट रहे हैं. आप थ्योरी को गलत कर रहे हैं. समझ गए? प्रिंसिपल जब एक बना हुआ है, बाप ही बच्चे का कल्याण करेगा. कर दिया. प्रवेश करने वाला आत्मा जिसमें प्रवेश करेगा उसकी दृढ़ता से इसको मिलेगा. तो जब सिद्धांत बना है तो सिद्धांत काटते कैसे? फल नीचे गिरते न्यूटन का सिद्धांत है. राम की आत्मा देने में मजा लेती है बाबा,
है ही मजा।
हाँ कुछ, हाँ वही बोलते हैं, देने में मजा है वो लेने में नहीं है।
विश्व कल्याण करने में जो मजा है, आत्मा को सुख है, वो सुख
लेने में,
जीवन का सुख ले लेने में मजा नहीं है।
कमजोर लोग लेते हैं बाबा और मजबूत लोग देते हैं। ये तो
संस्कारों में बुधा हुआ बाबा,
हर बात।
लेकिन एक बात है,
हाँ
आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन कुमारों की बुद्धि में यही बात आती है, राम वाली आत्मा जितने मजे ले रही है हम नहीं ले
रहे। नहीं, हम
बाबा नहीं, मतलब गए जन्म का उनका कर्म रहेगा ना, करके कुमार बन के रहे हैं और ये
है
जस्टिफिकेशन, उनके गए पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कर्म रहेगा इसलिए अभी कुमार रहे के उनको ऐसा संकल्प होता है। हम अदर कुमार है, हमें कुछ नहीं लगता है, हमें लगता है बल्कि शादी नहीं होती थी तो हम इससे भी बहुत कुछ कर पाते थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, दो हाथ के चार हाथ हो गए, चार बच्चे हो गए, आठ हाथ हो गए, तो मामला तो बढ़ गया। ये अदर कुमार होने के बाद लगते हैं, मगर कुमार को तो वही एक चीज बोलते ना, एक चिंता और ये
मुझे बिल्कुल नहीं होता ऐसा संकल्प। आप मेरा संकल्प ये है, अकेला लड़ता है ना, वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ। सारे रावण के सामने वो अकेला लड़ता ना, वो अनुभव करने
ही लिया क्या, तो झूठी बात है क्या। सन 76 से लेकर के जो सन 76 की स्थिति थी, 73, 74, 75, 76 से लेकर के 82 तक की स्थिति थी, जो 5 साल का 5 ईयर प्लान था, उस स्थिति में क्या वो अनुभव नहीं कर रहे
राम की आत्मा, अनुभव
ज्ञान की दृष्टि से अनुभव नहीं किया
बाबा। इसलिए तो मैं वहाँ गया कि वो लोग किस लिए विरोध हुए, और जब सारे संगठन टूट गए तो बाप कैसे अकेला ही निश्चय में खड़े हुए थे, वो मैं अनुभव करना चाहता हूँ।
वही
मैं अनुभव करने का प्रयास,
खड़ा हुआ नहीं था उसमें, शिव खड़ा हुआ था
बाबा। वो बीज तभी खड़ा हो सकता है जब धरणी ठीक तरह से हो, धरणी पावरफुल था ना, इसीलिए तो शिव खड़ा था, तो राम की आत्मा धरणी हो गई।
धरणी तो शरीर को कहा जाता
है, अभी शिव और राम की आत्मा देखेंगे,
शरीरधारी को कहा जाता है।
हाँ, शरीरधारी तो धरणी,
दोनों आत्मा के बीच में आधार हो गया, आधेय हो गया शिव और आधार हो गया राम वाली आत्मा।
जी बाबा, तो वही आधार पावरफुल था इसलिए उसमें शिव खड़ा था, अगर आधार टे हिलता था तो शिव चला जाता था, ये आधार टे हुआ धरणी ठीक नहीं है।
आत्मिक स्वरूप पावरफुल, आत्मिक स्वरूप में पावरफुल था, उसके कर्म ऐसे पावरफुल थे
उस समय का, ऐसा शरीर
गुंडू भाई कह रहे थे बाबा, जो मेहरोली सेंटर में बाबा जब भी आए और एक रात में पूरा सेंटर, कुंडू भाई बंबई वाले की प्रेमकांता बहन ने बताया,
कुंडू भाई
हाँ वो तो प्रेमकांता माता ही बोलते, तो प्रेमकांता माता ने बताया कि ये पूछते हैं कि बाबा से आप प्रभावित हुए थे, तो बोलते जरूर वो आए थे तो टायर के चप्पल पहने हुए थे, सबसे सस्ते शरीर में जो ये था कपड़ा उसकी सिर्फ सिलाई दिखती थी, बाकी सब जीर्ण हो गया था, जीर्ण मतलब परफोरेटेड हो गया था, तो और ऐसी पर्सनैलिटी थी कि कुछ पर्सनैलिटी नहीं थी, एकदम साधारण में साधारण भी एकदम
फर्स्ट क्लास पर्सनैलिटी।
और मगर उन्हें जो ज्ञान दिया और पूरे एक रात में पूरा का पूरा सेंटर टर्न हो गया, तो बोलते प्रभावित नहीं होंगे, मतलब वो एक बात अभी भी आज वो पकड़ के रखी है कि कितने प्रभावशाली थे वो आत्मिक स्वरूप में ज्ञान में।
जमुना के किनारे जो सेंटर वाले लोग थे वो
प्रेम का ग्रहण कह रही थी।
अच्छा,
अभी चार छह महीना पहले की बात है, जब कलकत्ता में बसी तो ये लोग पूछे ना, आप प्रभावित हुए थे क्या उस टाइम, जब भी उन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी कैसी थी, हाँ जी वही पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं थी, खुलिया से लेकर पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं थी ऐसा, मगर पावर इतनी थी कि उस एक बात से प्रभावित हो गई।
Thank you.
कैसे बना, ये पढ़ना गलत है। बाप बाप कैसे बना, ये एक पढ़ाई है। और दूसरा पढ़ाई है वो सभी छोड़ दो, बाप जो कहते हैं सब करते जाओ, ये एक पढ़ाई है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि बाप बाप कैसे बना, ये पढ़ना गलत है।
ये आकांक्षा किस लिए कि बाप बाप कैसे बना, इस ये कैसे को समझने के पीछे आकांक्षा क्या है?
बाप एक श्रीमत को पकड़ के चले और बना,
इस आकांक्षा के पीछे क्या आकांक्षा चुकी हुई है कि बाप बाप कैसे बना?
बाबा ये नहीं, बाद में ये नहीं कह रहे यीशु हम बनना चाहता, नहीं नहीं, वो उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य वो आता ही नहीं है, क्योंकि मैं बच्चा बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर मैं यीशु हम बनने के प्रयास किया तो ये सबसे बड़ा गलती हो जाता है। मैं सिर्फ समझना चाहता हूँ कि बाप कैसे बन, मतलब वो एनर्जी कैसा है।
वो तो डायरेक्ट
पढ़ाई है बस,
वो तो डायरेक्ट प्रश्न करके भी समझा जा सकता है। जब ये समझ चुका है कि ये बाप है तो बाप झूठ बोलेगा क्या?
नहीं बाबा, बाप झूठ नहीं बोलेगा,
जो बताएगा वो सच्चाई बताएगा ना।
बाप हमेशा यही चाहता है कि बच्चा ऊंचे स्थान पर चले जाए। मैं ऊंचे स्थान पर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि बाप बाप कैसे बना, वो एनर्जी क्या है, उतने पास उतना एनर्जी जो सारे विश्व को कंट्रोल करता है।
ऊंचा स्थान वही है जो आखिरी जन्म में भी बच्चे जो बाप के सहयोगी बनते हैं वो आखिरी जन्म में भी सुखी रहे। आखिरी जन्म में बाप बल दुखी रहे लेकिन बच्चे सुखी रहे।
मैं ये नहीं चाहता कि बाप मुझे हमेशा खुशी में रखे, मैं ये चाहता हूँ कि बाप के पास ऐसा गुण क्यों आ गया कि बच्चों के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस करे। राम राज्य में खुद नहीं बनता, कृष्ण को राजा बनता बनाता रहता है, तो इतना सैक्रिफाइस गुण कैसे आ गया राम के पास?
एक तो बात समझने की है ना,
विश्व कल्याण
नहीं सचिव हो गए तो इसलिए बच्चों को खुश होने लगे, जो बच्चा बुद्धि है उसको खुश होने लगे। जहाँ अनुशासनहीनता है ही नहीं वहाँ राजा बनना न बनना एक जैसी बात हो, वहाँ तो दो कला भी कम नहीं होती। जहाँ अनुशासनहीनता हो वहाँ अनुशासक बनकर के बैठना, शासक बनकर के बैठना वो कुछ वैल्यू रखती है। वहाँ
चैलेंज नहीं उधर, फिर क्या है? जिधर चैलेंज है उधर बरकरार रहना ही इम्पोर्टेंट है, चैलेंज ही नहीं है जिधर। उधर
बता, अभी आप कंपिल जाएंगे तो आपको कोई पहचानेगा भी नहीं है कि बहुत दिनों के बाद, बहुत दिन हो गए। ये
पुरानी माता है,
ये माता जी साहब जोन्स में एडवांस नॉलेज जब फैली है
जी,
तो सबसे पहले जिस जोन में फैली वो कर्नाटक जोन में फैली।
हाँ बाबा,
और कर्नाटक जोन में भी सबसे पहले
दावणगिरी। हाँ हाँ,
और दावणगिरी में भी सबसे पहले जो पार्टी आई उस पार्टी में सरोजा माता शारदा की मम्मी थी।
अच्छा, शांताबेन की मम्मी थी, शांताबेन नहीं थी,
शांता थी।
अच्छा अच्छा, शांता की नहीं, माताओं में शांताबेन की मम्मी और आप, तो पहले से जैसे थे वैसे ही है।
वैसे कहाँ,
मतलब निश्चय अनिश्चय में ऐसा कुछ
शरीर शरीर के पांच तत्वों ने इनको हरा लिया।
ज्ञान के हिसाब से हम पूछ रहे हैं बाबा,
ज्ञान के हिसाब से तो लेकिन विरोधी नहीं हुए।
अच्छा, थोड़े सारे अप डाउन हो गए, मतलब विरोधी नहीं,
नीलप्पा वगैरह के किसी के प्रभाव में।
तो रविश बीच ने तो पकड़ा होगा आपको, छोड़ा नहीं?
रवि
रवि और सब कंपनी ने प्रभाव डालने की कोशिश किया नहीं, आपका हिसाब किताब नहीं था? नहीं नहीं, कोशिश की होगी मिलने की, मिलकर कुछ अपना
काम किया होगा
या उनके द्वारा नीलप्पा भाई
नीलप्पा भाई जरूर आया होगा।
हम भी डर रहे हैं माता जी भाई, हम भी डर रहे हैं। मैं यहाँ क्लास आती हूँ ना, किसी को मत बोलिए, अगर उनको पता चल जाए तो वो यहाँ आकर
पीछे पड़ेगा।
इसलिए बाबा क्योंकि वो बहुत अपोज हुए थे ना, तो इसलिए मैं उनसे मिलने गया था, ये पता लगा कि आपको कहाँ मिसअंडरस्टैंड हुआ है। तो जब माता जी को पता चला तो माता जी ने कहा है कि नीलापो भाई को मत बोलिए कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, नहीं तो वो यहाँ आके बैठ जाएगा। उसके बारे में तो बात नहीं किया, सिर्फ हम बोलने की बात नहीं करते, बात करते
हैं। वेस्ट
माता हिंदी नहीं समझते, हिंदी समझते हैं, बोलते पर नहीं आते।
नहीं पहले जब 6-7 बार जब कंप्लीट हो गए ना, तो फटाफट बढ़िया हिंदी बोल रहे थे।
अच्छा बोलते भी
सारी भूल गए।
बराबर। कुछ कुछ माताएं मिली अपने को ऐसे कहने वाली, हम अच्छा हिंदी बोलते थे, अभी संग नहीं हिंदी का भी। साउथ में बहुत लोग नाक, मद्रास के बाबा दोनों बहने, मद्रास की जो भाई थे उनकी युगल और बहने, 3-4 बहने हैं ना मद्रास में, जिस कनन भाई वो सारे नॉर्थ में रहे, पिताजी फौजी में थे डिफेंस में, अच्छा हिंदी बोलते थे। अभी इधर आया और हिंदी कमजोर हो गई।
अभी लास्ट
में बच्चों की भूख पूरा करने के लिए रुके नहीं, देने में सुख मानते हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं।
हमारा भाई अगर जैसे बोल रहा है वैसे ही अगर चेंज हो जाए तो तुमको खुशी खुराक नहीं मिल रही
हो रहा है बाबा।
बाबा हम इनसे कहे उधर कि आपका कुछ ऐसा जरूर श्रेष्ठ पाठ होगा कि हम ये समझते हैं बाबा आपके लिए इधर आए, हम दूर में देख रहे 5 मिनट के लिए लोग तरस रहे हैं और नहीं मिल रहे, ड्रामा में नूंद रही है, मगर ये ड्रामा में नूंद है, आज क्लास भी से यही सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपके लिए हो रहा है, तो कुछ बचाओ मत, जो है वो पूरा ले लो।
मैं इसके अंदर की जो असली भावना है ना,
हाँ जी,
वो ये है कि प्रेम कांता चेंज हो जाए।
हाँ
समझ, चेंज हो जाए,
उदार तो
चेंज हो जाए।
हाँ जी,
जो भी विरोधी है वो सब चेंज
चेंज हो जाए तो बाप का
ना, ना, तो अंदर से तो सहयोग है। हाँ जी, लेकिन जो रास्ता है वो सही है,
उस संग इनका नुकसान
तो एक लव सिद्ध हो जाए, तो एक लव सिद्ध हो
जाए, वो एक लव करने वाली बात
बाप बोले ना, वो
एक लव माने शंकर जी। हाँ, एक लव माने वो एक ही होता है, एक लव, और बाकी उधर नंबर वार हो जाते हैं, दो दो चार चार को करते ही करते हैं।
सनातन धर्म की श्रेष्ठा आत्मा आने से कल्याण रहेगा, ये विधर्मी
के बाद अगर किसी का दूसरा के नंबर है एकलव बनने में तो वो लक्ष्मी है। एक सेवा और दूसरा
सबसे जस्ते वफादार बोल सकते
बाकी सब आदमी नंबर बार निकले, कोई 2 लव, कोई 4 लव, कोई 8 लव, कोई 10 लव, कोई 15 लव, कोई 100 लव, कोई 200 लव,
भारत के सबसे पतित बने
है,
पाकिस्तान के मुकाबले भी सबसे पतित बने।
इतना जरूर है, जितना एक को इसमें करने वाला होता है उतना अनेक जन्म सुखी रहता है।
जो आत्मा एक को
जितने ज्यादा को प्यार बढ़ता चला जाएगा उतने अरे जन्मों का या शूटिंग पीरियड में उतना ज्यादा दुखी है।
सिद्धांत
है ना, विचार से दुख
और विचार से सुख।
हमें पता नहीं था बाबा कि एक लव में मैंने उसे शंकर को कहा,
एक लव तो ध्रुवता नहीं है।
शंकर का पार्ट अलग हो जाता है, ब्राह्मण का पार्ट अलग हो जाता है।
शिव बाबा आकर के न उस स्वरूप के द्वारा न ब्राह्मण बनते हैं, न देवता बनते हैं, न राक्षस बनते हैं, वो तो पार्टी तुरिया हो गया, अलग हो गया। और कुछ रह गया वो
अगर कुछ रखा हुआ तो अमृत वेले में पूछ सकते हैं ना, आज अमृत वेले में पूछ सकते
हैं, सारा ही अमृत वेला
नहीं साकार अमृत,
साकार अमृत वेला
बाबा साहब
जी क्या निराकार अमृत वेला
भाषा नहीं आती है बाबा से बात करना चाहते हैं, भाषा नहीं आती है माता को आपसे बात करना चाहते हैं,
आपने भाषा सिखाई नहीं, आप जोड़ने के चक्कर में माता के साथ से रिलेशन ही भूल गए,
सिखा देंगे
माता को पहले सिखा, घर वालों को पहले, जो बाबा के आने के बाद जो आत्माएं बाबा की भाषा नहीं सीख पाती नहीं बोल पाती तो बाबा की बच्ची कैसे बनेगी, जो बच्चा होता है उसकी मातृभाषा होती है ना, माता पिता की भाषा वही बच्चे की भाषा, तभी तो बच्चे आ जाए,
भक्ति मार्ग में जो माँ बाप बुरा काम करते हैं तो उसका हिस्सा बच्चों को भोगना पड़ता है,
हैं? ये बस लीडर भी लोग
इधर दक्षिण भारत में है ये मान्यता,
नहीं नहीं इधर में उनकी मान्यता क्रिश्चियन शास्त्र में,
क्रिश्चियन डायनेस्टी में ये मान्यता है, हिंदुओं में क्या मानते हैं,
बुरा काम जो बच्चा भोगने पड़ेगा,
माँ बाप जो बुरा काम करेंगे उस उन कर्मों का फल बच्चों को भोगना पड़ेगा, ये ज्ञान
दोनों को बैलेंस बोलते हैं, जो कुछ उससे मिलता है वो बच्चों भी अनुभव कर रहे हैं,
क्यों
नहीं, ज्ञान मार्ग में बात नहीं अलग होती है और भक्ति मार्ग में बात, ज्ञान मार्ग में तो नियम ये है जो जैसा करेगा चाहे बच्चा हो चाहे बाप हो चाहे बाबा हो, जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये नहीं है कि करे कोई और भरे कोई और, ये भक्ति मार्ग का परंपरा है,
नहीं बाबा भक्ति मार्ग में भी वो दो बातों के लिए बैलेंस ठीक से कहा है,
हाँ बैलेंस रखेंगे, बैलेंस रखना चाहिए ना, बैलेंस रखना अच्छा है,
बैलेंस रख के ही बताया,
हाँ बैलेंस रखना चाहिए ना, इस बात का
जातक लिखते हैं ना उसमें लिखा है जननी जन्म पूर्व नाम पदवी पूर्व पुण्याना,
हाँ
पदवी पूर्व पुण्या होता है वो खुद आत्मा का,
हाँ पदवी जो मिलती है वो पूर्व जन्म के पुण्यों से मिलती है, हाँ
तो जननी जन्म माना उनका भी हिसाब किताब, वो बच्चा उनके आने पैदा होना है, तो
यहाँ तो उल्टा बताया है, यहाँ उल्टा बताया है, ज्ञान में बताया है जहाँ जन्म वहाँ जीत,
तो वो जीत हुआ हार हुआ,
तो जिस बच्चे ने जन्म लिया जिन माँ बाप से वो जीत में रहा या हार में रहा, वो जीत में रहता है,
ठीक है बाबा,
और भक्ति मार्ग में उल्टा कर दिया कि माँ बाप ने जो किया हुआ है उसका फल बच्चे भोगे, ऐसे थोड़े माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं बच्चों के दास दासी, तो जरूर पूर्व जन्म में उन्होंने कुछ हार खाई है कर्मों के ऊपर उन आत्माओं से जो बच्चे बने हैं, इसलिए उनकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है, सारी जिंदगी की कमाई उनको सौंपनी पड़ती है, तो भक्ति मार्ग में तो कोई कोई बातें बिल्कुल उल्टी है,
नहीं बाबा जब वो जहाँ जीत वहाँ जन्म जैसा बाबा बोला है,
हाँ?
तो पिछले जन्म में दोनों का हार जीत हुआ ना,
हाँ पिछले जन्म में जो बच्चे बने हैं इस जन्म में वो बच्चों ने कर्मों में श्रेष्ठ कर्म किए,
वो जीत पाया तो माँ बाप ने हार पाया,
माँ बाप ने हार पाया
उसी को वो सेंटेंस बताया,
क्या
ये समझने वाले वो जातकों पर दो हेडिंग बताता है, वो संस्कृत का ये वर्ण है जननी जन्म पूर्वा नाम और पदवी पूर्व पुण्या नाम,
हाँ?
दोनों का बैलेंस ही बताता है,
पदवी पूरी जो पदवी ऊंची मिलती है वो पूर्व जन्मों के आधार पर मिलती है,
पूर्व जन्म तो आधार पर ही मिलता है,
पूर्व जन्मों के आधार पर ऊंची पदवी मिलती है, किसी ने अच्छे कर्म किए हैं दान धर्म बहुत किया है तो तो अगले जन्म में वो राजा बन सकता है, तो ऊंची पदवी मिलेगी। लेकिन जहां जाके जन्म लिया है जिन राजाओं के घर में,
उसको कहा गया ना जननी जन्म
न, वो जननी जन्म जन्म तो वो जननी कोई चैतन्य व्यक्ति है कि कोई धर्म चैतन्य व्यक्ति है। हाँ,
उसी का जो माँ बाप बनता है,
माँ बाप बनता है, वो पालना भी तो करता है, बनी बनाई राजधानी भी तो देता है उसको,
देता है।
उनको लड़ाई करके थोड़ी लेनी पड़ी। हाँ, फिर तो मेहनत करनी पड़ी ना,
मेहनत।
और क्या, माँ बाप ने मेहनत की, बच्चों ने बैठ के खाया, बोगा
वही बाबा जो ज्ञान में बताया वही बात को,
वो बात नहीं बताई, वो बात कहाँ बताई। यहाँ तो बच्चों ने पूर्व जन्म में श्रेष्ठ कर्म किया, उस श्रेष्ठ कर्म के आधार पर जिनके साथ रह करके श्रेष्ठ कर्म किया उन्होंने भ्रष्ट कर्म किया, इसलिए उनको माँ बाप बनना पड़ता है और बच्चों को बच्चों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो बच्चे तो मालिक होते हैं किसके, माँ बाप के। ये संगम युग की परंपरा है,
वही परंपरा ठीक से बताया बाबा,
तभी वो ठीक से नहीं बताई।
नहीं, वो सेंटेंस कहते हैं उसी में, वही
सेंटेंस बताओ, मैं समझाओ।
हम उसमें एक सेंटेंस भूल गए।
अच्छा, भूल गए तो याद कर लो फिर, मैदान में रख लो। और
उसका एसेंस तो सार तो वही है, सेम है, जहाँ बाबा बोला है वही याद है।
और किसी को समझ में आ रही है ये बात है? क्या बताओ? नहीं नहीं, जो जो संपत भाई कह रहे हैं
उन्होंने बताया, वो नहीं, जो बाबा ने बताया वो हमारा। इसका बुद्धि में क्या है कि हमें कैसे?
आप संपत भाई को उल्टी खोपड़ी वाला बता रहे हैं क्या?
जो 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 है वो श्लोक वो बता रहे ना, जो हम पढ़ाए
हैं। चलो और दूसरी बात कोई निकालो, टाइम भी हो रहा है। और
नवग्रह एक नवग्रह को वैल्यूलेस कहा,
एक नवग्रह को वैल्यूलेस इसलिए कहा है कि दूसरों की वैल्यू का पता चले।
उसका नाम क्या है?
पुखराज। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। रिसेंट अब्यक्त वाणी में। हाँ,
तो एडवांस पार्टी के बारे में बाबा ने बताया है, एडवांस पार्टी रेडी है।
हाँ,
और बेसिक वालों को, बेसिक वालों को इंतजार कर रहा है, मतलब रेडी होने के लिए कह रहा है।
हाँ,
तो सब वो बात के हिसाब से एडवांस पार्टी तो रेडी ठीक है ना, फिर और एडवांस पार्टी में विनाश होने का जरूरत है?
अरे, सूर्यवंशी में विनाश होगा क्या? एडवांस में भी एडवांस वास्तव में है, कौन कौन से वंश के हैं? सूर्यवंशी एडवांस है, एडवांस ही रहेंगे। बाकी जो कन्वर्टेड हैं, दूसरों की बात मानने वाले हैं, बाप को ठोकर मानने वाले हैं।
तुमने वो आठ आत्मों के लिए कहा है?
हाँ, आठ क्यों, आठ के जितने भी सहयोगी हैं, आठ अकेले हैं क्या? आठ अकेले थोड़े ही हैं, उनकी आठ की महिमा करने वाले भी तो कोई ग्रुप होगा। हाँ, और
हाँ जी,
शैव। हाँ, वीर शैव
मुर्दे को घाट के जमीन गए।
मैंने शैवों में कोई ऐसा संप्रदाय है जो मुर्दों को गाड़ते हैं?
पहले बिटा के ले जाते हैं, फिर गाड़ देते, ले जाने का टाइम में बिटा के ले जाते हैं, फिर गाड़ देते हैं, ये सब कुछ।
अच्छा, पड़ा हुआ नहीं ले जाते हैं?
नहीं,
धराशाई होके नहीं ले जाते हैं, बैठा के ले जाते हैं, बैठा के ले जाते हैं, और देह अभिमान की जमीन में, देह अभिमान की मिट्टी में गाड़ देते हैं। बैठा के माने पुरुषार्थ में बैठे रहते हैं या गिर जाते हैं? वो देहाभिमान की मिट्टी में गिरने पर भी पुरुषार्थ में बैठे रहते हैं, हिलते नहीं हैं। माना जो बर्फ में दबेंगे वो खलास हो जाएंगे या बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे।
वो यहाँ ही शुरू हुआ।
हाँ तो वीर कौन होंगे? वीर तो उन्हें ही कहेंगे। हाँ
वो वीर से परंपरा भी कर्नाटक में ही शुरू
हुई। हाँ तो और पहचानते कौन है पहले? एक बाप आता है तो पहले कौन पहचानते हैं? पहले कर्नाटक वालों ने पहचाना। भले नाटकबाजी करते हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ और
आपके साथ योग लगाने से हमारा विकल्प विनाश होता है।
बाप के साथ योग लगाने से? हाँ हाँ
हमारा विकल्प विनाश होता है। लेकिन हमको हमारा विकल्प का पनिशमेंट होना भी है ना बाबा, कैसे ये सारे?
माना बाप को याद करना एक प्रकार का पनिशमेंट है?
नहीं बाबा, बिना हमें कैसे शिक्षा से बचाना कैसे होता है? बाप तो
जो सजा हम किया है, जो गलत किया है,
हाँ?
उसको सजा बोलना ही है।
हाँ?
बाप की याद से कैसा वो विराट हो जाता है?
क्योंकि बाप को याद करना कठिन होता है। 63 जन्म की आदत कौन सी है? देह को याद करना या आत्मा को याद करना? वो प्रैक्टिस तो हमारी है नहीं, अब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो वो जैसे एक तपस्या हो गई असली। वो जो हठ योगी हुए वो तो शरीर को तपाते हैं, और हम आत्मा मन बुद्धि को तपाते हैं। तो अगर प्यार में रहेंगे, क्या मोहब्बत में रहेंगे, तो मेहनत अनुभव नहीं होगी। अगर मोहब्बत में नहीं रहेंगे तपस्या अनुभव होती है।
हम शिक्षा से बच सकते हैं ना बाबा?
हैं?
हम शिक्षा से बच सकते हैं।
हाँ, हम जो पनिशमेंट समझते हैं जिस बात को, वो पनिशमेंट से बच सकते हैं। और
आज का मुरली में जो बाबा कायमगंज के लिए बताया,
हाँ
मैंने बीपी और पीबीके दोनों ट्राई करने के बाद भी वहाँ सेंटर खुल नहीं सका।
नहीं खुल सका? खुलते भी हैं तो टूट जाते हैं।
नहीं ऐसा, यहाँ भी एक गांव है,
हाँ
वहाँ भी दोनों ट्राई करने के बाद भी खुल नहीं सका।
कहाँ?
डेंगड़ी कोटा करके। दो तीन बार पीछे वाला भी
गाँव है, डेंगड़ी कोटा कर तमिलनाडु में।
दक्षिणी?
डेंगड़ी कोटा।
डंकिनी माने वही दक्षिणी? डंकिनी
असुरनी क्या है?
डंकिनी
करके
डाकिन, डाकिन और डाकिनी।
डाकिनी का वो किला है, वो उसका नाम है।
कोट माने किला,
कोटा कोटा माने किला है।
डंकिनी कोटा है, डंकिनी कोटा का मतलब हुआ कि जो शांकिनी डांकिनी भूत प्रेतनी होती है ना, उनमें एक योनी होती है, उसको कहते हैं डांकिनी। हिंदी में कहते हैं उसको, कहते हैं डांकिनी। उन डांकिनियों का कोटा, कोटा माना किला। अब ज्ञान मार्ग में डांकिनी कौन है? ज्ञान मार्ग में देवियां तो बहुत दिखाई है, और उन देवियों के बीच में किस देवी का नाम लिया है जो जिस तरह बाबा बोलते हैं वो बोलना उतना अच्छा नहीं लगता है? चंडिका देवी, चंडिका देवी की भी पूजा होती है। तो वो उस हिसाब से एक तरह से डंकिनी है, वो अंत तक ऐसी स्टेज रखेगी जिससे विनाश होता रहे। जो काली का मंदिर है, उस काली के मंदिर में पवित्रता देखी जाती है या इम्प्योरिटी पड़ी रहती है? इम्प्योरिटी देखने में आती है। कहां लक्ष्मीनारायण का भव्य मंदिर और कहां महाकाली का मंदिर, जो जाए तो रपट जाए, तेल और खून पड़ा ही हुआ है, रपट जाने का डर रहता है। रपट जाना माना गिर जाना। और
वो गांव को बायोफ्यूल से टैली कर सकते हैं।
हाँ, डंकी नहीं कोटा, उसमें कोई निकल नहीं रहा है, है?
वो हमारा नेटिव प्लेस।
अरे तेरी की नहीं, ये क्यों कह दिया हमारा नेटिव प्लेस है, है?
जो आज यहाँ से जो पद्मा माता गायत्री देन है, सूर्य
है,
जो पहले जो आकाश के पहले आया था
पद्मा माता
वो जयनगर का,
हाँ,
और उनका वो जो सिस्टर्स है ना,
हाँ,
वो गायत्री बहन आते ना,
आठ गायत्री बहन, ये
हाँ वो निकल गए
अभी
उनका गांव।
अच्छा, गायत्री बहन का गांव है।
और एक माता बेटा है,
कौन? हाथ उठा दो। अच्छा, डंकनी कोटा गांव है। अच्छा, तो ये कैसे निकल आए? मना आ गए, लेकिन वहाँ एडवांस गीता पाठशाला है,
गीता पाठशाला नहीं, सेंटर भी खुला था,
हाँ, लेकिन चल नहीं सका।
दो बार तीन बार है
बीके का, तीन बार
है ना बीके की गीता पाठशाला चल सकी, ना एडवांस की गीता पाठशाला चल सकी। अच्छा अच्छा, लेकिन कायमगंज में तो थोड़ी बात अलग है। कायमगंज में जो कायमगंज का मेन शहर है वो कायमगंज है, लेकिन उसका लास्ट जो सीमा है उस सीमा में है कंपिल। क्या? वहां सब सेंटरों का बाप बैठा हुआ है। और है कायमगंज क्षेत्र में, फरुखाबाद क्षेत्र में ही गिना जाता है, इसलिए मुरली में बोला है फरुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते, फरुखाबाद में मालिक को बहुत मानते, ये नहीं बोला फरुखाबाद तरफ, माना प्रॉपर फरुखाबाद की बात न भी हो लेकिन फरुखाबाद जिले की डिस्ट्रिक्ट की बात है। तालुका है। और
कंपिल होबले
है,
कंपिल होबले हेडक्वार्टर से
फिरका, कंपिल
फिरका फिरका होबले बोलते हैं। इधर तो तहसील के लिए तालुक बोलता है,
तहसील है, तहसील कोर्ट है।
और जो होबले होता है ना तो छोटा ही
छोटा छोटे छोटे गाँव,
पांच पांच दस विलेज,
हाँ,
विलेज का ये उसका हेड है,
छोटे छोटे गाँव है। वो कंपिल कंपिल है, कलयुग के अंत में आकर के छोटा सा छोटा गांव रह जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, और सतयुग के आदि में महिमा बढ़ जाती है, कलयुग के अंत में गिर जाता है।
कितना वो आने के बाद कितना सच्चा चलने तो वो आत्मा को ज्यादा मिलता है, सच मिलते नहीं। क्यों?
अच्छा, ज्ञान इतना सच्चा है, जब ज्ञान में आए तो ज्ञान सच्चा है, तो इस सच्चे ज्ञान में आने से आत्मा को सुख होना चाहिए या दुख होना चाहिए?
सच में चलते तो सच मिलते नहीं, किसी जगह में चलने तो अन्याय होता है।
हाँ, जो ज्ञान में आ जाते हैं, सच्चे ज्ञान में आ जाते हैं, आने के बावजूद भी उनको हर जगह ठोकर मिलती है, और सच्चाई मिल जाने के बावजूद भी सच्चाई से तो सुख होना चाहिए, हर जगह ठोकर मिलती है, दुख क्यों मिलता है? यही प्रश्न है। यहाँ 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है।
ज्ञान के आने के पहले से सच चलते,
ज्ञान में आने के पहले सच की जानकारी नहीं थी,
मैं वो काम के ऊपर क्या वो बात करने के वो सच्चे चलता है, जाने के आने के बाद सच्चे चलता है, क्यों व्यवहार को
क्या कहना चाहते हैं ये? आप अपनी भाषा में बोलिए, आप अपनी भाषा में बोल दीजिए।
ज्ञानक ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೇನು ಸರಿಯಾದ ಇದು
ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೂ
ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
हाँ जी,
आपका कहना है वो ज्ञान के आने के पहले ही सच्चाई से
चलते थे
और ज्ञान में आने से ही सच्चाई से चलते,
ज्ञान में आने से पहले सच्चाई को जानते थे, सत्य क्या है उसको जानते थे,
लौकिक में चलते हैं ना,
लौकिक में आप सत्य क्या है उसको जानते थे,
तो किसी को अन्याय करना ऐसे नहीं,
न्याय और अन्याय को जानते थे, सत्य क्या है असत्य क्या है, सत्य युग क्या है और झूठ युग क्या है, ये जानते थे,
सत्य कलयुग नहीं चाहते,
तो सच्चाई सबसे बड़ी क्या है, बाप ही तो सच्चाई है, तो वो तो जानते ही नहीं थे, तो सब बेकार हो गया। अभी तो जानते हैं, जानते हैं तब हमें ये दुख मिल रहा है, तो तब ये बात लागू होती है, क्या जो अभी बोले कि माँ बाप का पाप जो है वो बच्चों के ऊपर आ जाता है, माना जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं में सबसे बड़ा पापी कौन हुआ होगा, ज्यादा देवान से चलने वाला है? है? अरे कोई राजा ऐसा होगा जो आखिरी जन्म में आके सबसे नीचे गिर जाता है, प्रजापिता ही सबसे नीचे गिरता है, प्रजापिता ही सबसे ऊपर उठता है, लेकिन वहाँ देह अभिमान होता है, लेकिन पाप एक गुना बनता है, और यहाँ भी देह अभिमान है, लेकिन अगर पाप कर्म करे ज्ञान लेने के बाद तो 100 गुना पाप बनता है, तो सत्य असत्य का ज्ञान होने के कारण अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ये अंतर हो जाता है, है प्रजापिता के 63 जन्मों का पाप किसके ऊपर है, प्रजापिता के ऊपर है या बच्चों के ऊपर है, ज्यादा पाप प्रजापिता के ऊपर ज्यादा पाप है 63 जन्मों का, क्योंकि उस समय देवभान था राजाओं में, प्रभुता पाए काही मत नहीं, आत्माभिमान तो था ही नहीं, लेकिन पाप कर्म एक गुना बनता था, और यहाँ अगर ज्ञान होते हुए भी उल्टा काम करे तो पाप कर्म 100 गुना बढ़ जाता है,
ज्ञान में आने के बाद
नहीं, ये बात दोनों के लिए लागू होती है, बाप के लिए भी लागू होती है और बच्चों के लिए भी लागू होती है, बच्चे अगर ज्ञान के विपरीत चलेंगे तो 100 गुने पाप के भागीदार बनेंगे, और अगर बाप ज्ञान के विपरीत चलेगा तो 100 गुना पाप का भागीदार बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, तो अब यहाँ ये बात लागू होती है कि पूर्व जन्म का अनेक जन्मों का पाप प्रजापिता का ज्यादा है, सबसे जास्ती पापी कौन हुआ, सबसे ज्यादा दुनिया का देह अभिमानी कौन हुआ, देह अभिमानियों का भी बाप कौन हुआ, प्रजापिता रावणों में भी सबसे बड़ा रावण कौन हुआ, सारी दुनिया रावण संप्रदाय, राम अंत में क्या बनता है, राम ही सबसे बड़ा रावण बनता है, तो सबसे ज्यादा पाप हुआ ना, सर के ऊपर सबसे जास्ती पाप का बोझा किसके ऊपर है, बाप के ऊपर, माँ के ऊपर, तो उनका पाप किनको भोगना पड़ रहा है,
लेकिन पहले शुभ पाए तो आने से बोलते है मैं श्रेष्ठ आत्मा को चुनता,
श्रेष्ठ आत्मा किस आधार पर,
ब्रह्मा विष्णु और शंकर,
किस आधार पर श्रेष्ठ, ये बात जानी ना, इस आधार पर श्रेष्ठ कि 63 जन्मों में वो आत्मा जो है वो आत्म की स्थिति में रह करके पाप कर लेती है, आत्मिक स्थिति की यहां की प्रैक्टिस वहां 63 जन्म काम आती है। पाप ज्यादा करता है क्या, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहकर करता है, इसलिए जास्ती नीचे नहीं गिरता। अष्टदेवों का भी यही हाल। और तो अब ये जो पॉइंट था जो क्लियर नहीं हो रहा था, अब ये पॉइंट क्लियर है कि मां बाप का पाप जो है वो बच्चों को भोगना पड़ता है।
अब वही पॉइंट रुद्रमाला के सदमान को लागू होता है, वही पॉइंट।
हाँ, रुद्रमाला की जो अपनी रचना होगी उनको भी ये बात लागू होगी। रुद्रमाला के मणकों की जो अपनी रचना होगी उनके लिए ऊपर भी यही बात लागू होगी।
कन्या माता उनके लिए
आज तो बंबई बंगलोर वाले बंबई वाले बनते जा रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो।
कन्या माता के लिए पृथ्वी कहा गया है ना, भूकंप होने से कन्या माता ज्यादा हिलेंगी।
हाँ, जास्ती ज्ञान जिसमें होगा वो कम हिलेगा और जास्ती अज्ञान जिसमें होगा वो जास्ती हिलेगा। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं?
जापान
नहीं, इंडिया में बताओ। नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा तूफान कहाँ आते हैं? आंध्रा में आते हैं। आंध्रा नाम क्यों पड़ा? हाँ, क्योंकि कर्नाटक में फिर भी हिंदी जास्ती जानते हैं, लेकिन आंध्रा में हिंदी जानने वाले बहुत कम हैं। इसलिए बात की गहराई को, ज्ञान की गहराई को उतना पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए तूफान ज्यादा आते हैं, ज्यादा टिकते हैं।
तो बाबा बात ये है, हाँ? तो पुरुषों के लिए कौन सा तत्व लागू
है? हाँ, पुरुषों को तो बता दिया दुर्योधन दुशासन।
कौन सा तत्व लागू किया? ये तो पृथ्वी को लागू किया है, पृथ्वी को टैली किया है कन्या माताओं के लिए। पुरुषों के लिए कौन सा तत्व टैली किया
है? जो कन्याएं माताएं हैं वो धरणी है, और जो पुरुष हैं, पुरुष माना कठोर स्वभाव वाले, तो जो पुरुष हैं वो धरणी में अत्याचार करने वाले हैं,
उसको तत्व के लिए टैली नहीं किया। दूसरा तत्व के लिए टैली नहीं किया।
तत्व तो पांचों प्रकृति के हैं या पुरुष के हैं? हाँ, तो ज्यादा अत्याचार पुरुष करता है काम विकार से, क्रोध विकार से, कि तत्व करते हैं? हाँ, पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन।
जो ज्यादा पुरुष जन्म लेते हैं
तो दुर्योधन, हाँ, जो ज्यादा पुरुष का जन्म लेंगे तो वहाँ ज्ञान तो है ही नहीं, तो अत्याचार कौन ज्यादा करेंगे? पुरुष ही करेंगे।
आकाश
भी तत्व है पृथ्वी का, पर जैसे पृथ्वी एक तत्व है प्रकृति का, ऐसे आकाश भी एक तत्व है। और अरे बंबई की याद दिला दी, क्योंकि बंदी हो गए। हाँ हाँ,
विमेन बुर्का पहनते हैं
यार,
भाई लोग क्यों नहीं पहनते?
जो लाज रहती है वो ज्यादा स्त्रियों में लज्जा रहती है या पुरुषों में रहती है? हैं, स्त्रियों में जास्ती लज्जा रहती है, कोई ऐसा वैसा काम हो जाता है ना तो स्त्रियां लज्जायमान होती हैं, पुरुष कोई लज्जायमान नहीं होते हैं, इसलिए वो बुर्का पहनती है। सबसे ज्यादा निर्लज्ज होने का काम कौन करते हैं? कौन से धर्म के लोग करते हैं? इस्लाम धर्म के लोग निर्लज्ज होने का काम करते हैं, तो इस्लाम धर्म की औरतों के साथ करते हैं या दूसरे धर्म की औरतों के साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? इस्लाम धर्म की ही औरतों के साथ करते हैं, तो वे बेचारे लज्जायमान रहती हैं, अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती किसी को। कोई गंदा काम करता है तो मुंह छुपाता है।
बाबा राम राजा राम प्रजा राम शंकर से बताया कि सत्युग में लोन लेने के मुझे दक्कर ही नहीं, कर्जा लेने के लिए आठवा नारायण राम से कर्जा लेता है, उसे बताया क्यों लेता है।
राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिये नगरी बसे दाता धर्म का उपकार है, ये जो बात है वो भक्ति मार्ग की है या कहाँ की है, ये फिकरा कहाँ का है, वास्तव में ये प्रैक्टिकल में लागू कहाँ होता है। नहीं, वहाँ प्रैक्टिकल में लागू होता है, वहाँ तो राम को कोई जानता भी नहीं। हाँ संगमयुग में लागू होता है, संगमयुग की सारी बातें भक्ति मार्ग में चलती है। तो ये जो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, ये संगम युग में की बात है, सत्युग त्रेता की बात, वो यहाँ यहाँ निश्चित हो जाता है। यहाँ हमको पहचान है कि आठवां नारायण कौन है, यहाँ हमको पहचान है कि पहला राम कौन है, वहां कोई पहचान नहीं हो, कोई जानता ही नहीं है कि राम कौन है और रावण कौन है और क्या कौन है। दो सारी बातें यहाँ की है, यहाँ पहचान रहे हैं ना, यहाँ पहचानेंगे कि ये आठवां नारायण बनने वाला है, इस नारायण का बच्चा जो है उसका राज्य खत्म हो जाएगा, वो अपने राज्य को गंवा बैठेगा।
पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत कम है तो क्या करें?
सवाल यह है हिम्मत कैसे आती है, जो मदद जास्ती मिले, और मदद जास्ती किसको मिलती है, है? सर्वसेवल बच्चा हो या तो याद करने वाला बच्चा हो, याद करने वाला भी वातावरण को सुधारता है, सर्वसेवल है, और ईश्वरीय सेवा में जो लगा रहता है, चाहे तन की चाहे मन की चाहे धन की, वो भी बाप को बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। बाप सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला, ये बात है क्या? अब मेरा मेरा कुछ नहीं, न देह अपनी न देह का संबंध अपना, फिर भी पकड़े हुए तो अवस्था ऊंची उठेगी नीचे गिरेगी, तो कोई कारण ही नहीं
है। वहाँ रहने के लिए पकड़ना ही पड़ता।
कहाँ रहने के लिए, किन के साथ?
जब तक रहते तब तक तो बता नहीं, ऐसे बोलते हैं पूछ
रहे। ये अपनी बात पूछ रहे हैं, आप अपनी बात पूछ रहे हैं, आप जो अपनी बात पूछ रहे हैं उनके युगल जो है वो ज्ञान में नहीं चलते, और ये अपनी बात पूछ रहे हैं इनकी युगल भी ज्ञान में चलती है, खुद भी ज्ञान में चलते हैं, और पालना करने के लिए बच्चे भी नहीं, तो ये बात आपके ऊपर लागू होती है उनके ऊपर लागू होती है?
इनकी जाल में फंसे हैं, इनकी जाल में फंसे
हैं। तो ये बात माता के लिए थोड़ा ही, माता तो अबला होती है कलयुग। और
बाबा अभी भाई ने प्रश्न पूछा था कि ऋषि और मुनि में क्या फर्क होता है, तो बाबा बोले कि ब्रह्मा तो है मुनि
मन चलाने वाला,
ऊंची तो जो शंकर है वो है ऋषि,
ऋषि माना पवित्र रहने वाला।
तो फिर विष्णु कौन था?
विष्णु तो कोई होता ही नहीं चार आत्मा, कोई होता है क्या? ब्रह्मा ही तो विष्णु बनता है, भूल गए? ब्रह्मा ही विष्णु बनता है।
दोनों तो चलते हैं, फिर भी बाबा बोलते हैं ना एक गाड़ी का दो पहिया है, दो पहिया तो ठीक नहीं चलता है ना, स्पीड में फर्क होता है ना, इसीलिए तो प्रॉब्लम होता है,
इसीलिए तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। और
ये बोलते हैं वो, नारद को भक्त शिरोमणि या तो शिरोमणि बोलता
है, भक्त शिरोमणि,
भक्त शिरोमणि, ऐसे जगदम्बा मेरा
है,
तो कौन सा नारायण होता है भक्त शिरोमणि, कौन सा नारद
है,
कौन सा नारायण?
हाँ सारे ही नारायण भगत, जो भी नारायण है वो सारे ही क्या है, सत्युग में जितने भी नारायण होंगे, चाहे अब्बल नंबर का हो चाहे लास्ट लास्ट डायनेस्टी का हो, वो भगत है या ज्ञानी है? भगत है।
शिरोमणि कौन
है? शिरोमणि वही है जो ज्ञान देता है, नार माना ज्ञान देता है, लेकिन खुद
नरक में रहता है।
खुद नहीं लेता, नरक का नरक में ही रहता है। जितने भी विधर्मी हैं वो देवताओं को मानते हैं या भूत प्रेतों को मानते हैं, फरिश्ताओं को मानते हैं, भूत प्रेतों को मानते हैं। भूत प्रेत नरक में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं? नरक में रहते हैं।
वाला अचानक बुला दिया मेरे को, बाजू में एक गांव में अचानक मेरे को बुला दिया किसी को कोर्स देने के लिए। मेरे को कितना बुद्धि में भी वो की दिया, इसलिए गलत होने को माफ करो।
चनपटना में किसी ने बुलाया इनको, इन्होंने ज्ञान दिया। हाँ,
गलत किया तो
काय की गलत किया,
कोर्स दिया ना।
कोई बुलाता है तो उसको ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए,
माना उनको जितना
बताने में कुछ गलती हो गया
तो गलती जितना हम जानेंगे उतना सच्चाई से सुनाएंगे गलती किया बात।
इसलिए उनको उमंग उत्साह है, खुशी है उनको।
हाँ तो अच्छा, जो उमंग उत्साह बढ़ाना कोर्स का मतलब क्या है? फोर्स, फोर्स बढ़ाना। अगर उनको फोर्स आया है तो आप क्यों ये सोचते हैं कि हमने गलत सुनाया?
पूरा नहीं बताया इसलिए।
अच्छा तो पूरा बता दो जाके।
पूरा नहीं बता सकते
आप, जो समझते हैं कि हमने पूरा नहीं बताया वो उनको पूरा बता दो।
उनके लिए वो ठीक है, मैं नहीं धारणा नहीं कुछ नहीं, फिर भी बुद्धि में आए उतना बैठते नहीं, और फिर भी उमंग उत्साह है, विश्वास है बाबा के ऊपर, इसलिए मेरे को थोड़ा गलत होने तो माफ करो बाबा।
आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं?
पूरा पता नहीं ना इसलिए।
क्यों अनुमान लगा रहे हैं? हमने गलत बताया होगा, आपने अपने दिल से तो सच्चा बताया ना, कोई झूठी बात तो नहीं बताई, जितना जानते थे उतना सच्चा बताया, तो व्यर्थ में अनुमान क्यों करते हैं? अनुमान से नुकसान होता है।
अनुमान नहीं, फिर भी पूरा नहीं पता है।
चलो, अनजान से जो भूल हो जाती है उसका उतना पाप नहीं बनता है, जो जानबूझ करके भूल होती है उसका पाप बनता है ज्यादा। ये ओम शांति कर रही है माताएं।